राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 1992 प्रातः लगभग 9 बजे वाराणसी में हुआ। राम
पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। ये पत्र लिखे है तो किसी किसी पत्र के ऊपर भगवान का नाम नहीं है। पहले भगवान का नाम लिखे पत्र पीछे पत्र लिखे। एक पूछता है अर्जुन की बात सुन भगवान को कृष्ण को बहुत बुरा लगा तो क्या भगवान को बुरा लगता है क्या? यदि भगवान को बुरा लगे तो फिर नर में और नारायण में फर्क ही क्या हुआ? कृपा करें मेरी बात को पूरी सुने अधूरी न सुने। पहले शरण होकर कहता है कि साधिमान स्वाम प्रपन्न आपके शरण हो मेरे को शिक्षा दीजिए। ऐसी बात कह करके भगवान बोल रहे नहीं पहले कहते दुष्कृत नहीं करूंगा। ये क्या करता है? बचपन करता है। आप शिक्षा दीजिए मेरे को ये तो पहले पूछा और अगर ही आसान न हुए साफ करेगा इसे तो नहीं करूंगा। ये क्या करता है? ये कोई बुरी नहीं है। वास्तव में भगवान को बुरी लगती तो अथर्व में कहा है कि मनुष्य जैसे यथेष्टा गुरु तो बुरी लगती तो यहाँ कहते जैसे चिंता गुरु तुम तो जिन्हें नहीं करते मर्जा ऐसा नहीं केवल शरणागत की जबान से स्वीकृति का भाई तो भगवान ने उपदेश आरम्भ किया। ऐसा कि समझ लो मेरी बात को पहले बात करो समय जाता है। क्या कोई सज्जन लिखते हैं कहीं जाते हैं तो कई बातें सुनते हैं तो कभी कैसी कैसी मन में आती कैसी है तो ये कब तक आती है कि जब तब अपने जीवन का एक ध्येय नहीं बना लेता तो बहुत सारा अहंता से बुद्धि अव्यवसायी नाम अव्यवसायों की बहुत शाखा वाली अनंत बुद्धियां होती है। वो गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास तो कोई सा कार्य सिद्ध कर नहीं सकेंगे। तो ये बन जाए जीव का ये तो वे सब ठीक रहता है। हमें कृष्ण भगवान की भक्ति करना राम जी की कृष्ण भगवान शिव जी की भक्ति करना है और उस तत्व को प्राप्त करना है। ऐसा एक लक्ष्य बनने पर फिर तरह तरह की बातें सुनने पर भी ऐसा विकल्प ऐसा संदेह नहीं होता और एकांत मिलना चाहती मिल लेना कोई बात। एक सज्जन लगते हैं कि आत्म साक्षात्कार की विधि क्या है आप कृपा अनुभव के आधार पर बताने की कृपा करें। मैं ऐसा अनुभव का ठेका नहीं लेता हूँ। मैंने जैसी सुनी है समझी है पढ़ी है उसके अनुसार मैं बात कहता हूँ। आप चाहते हैं कि भैया साक्षात कैसे हो जाए एक बात बताता हूँ। दूसरी बातें बहुत पुस्तकें में है मेरे भी लिखाई हुई कई पुस्तकें हैं गोविंद गाय जी की लिखाई हुई पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को आप देखें उनसे बहुत समाधान होगा। पार्थ आत्म सुगम और जल्दी सीधे सीधे उपाय चाहते हैं, तो जैसे मैं बैठा हूँ तो मैं ये तद्र नहीं हूँ, ये अनुभव करूँ, केवल करना नहीं सीखना नहीं, आत्म साक्षात्कार का उपाय असली बता रहा हूँ, केवल सीखना नहीं अनुभव करना कि मैं चद्दर नहीं हूँ, ये बात करना कि मैं चमड़ा नहीं हूँ, इस बात अनुभव करना कि मान से हड्डी है ये मैं नहीं हूँ, ये जो डैड जर्मन का थेला बना ये मैं नहीं हूँ, ये तो यहीं उत्पन्न हुआ है माँ के पेट में यहीं पड़ा रहेगा, ये मेरा स्वरूप नहीं है, एक मनोवृत्ति है चंचल होता है मन, ये मेरा स्वरूप नहीं है, एक निश्चय करने वाली बुद्धि है वो मेरा स्वरूप नहीं है, और मैं करता हूँ मैं हूँ, इस मैं हूँ में भी मैं मेरा स्वरूप नहीं है, मैं प्रकृति का कार्य है, महाभूतांगे अहंकार क्षेत्र के बढ़ने में आया है, और भूमि रातो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देवता अहंकार, इसी अम्बे बिना प्रकृति सदा अपरा, ये अपरा प्रकृति है, और जीव मेरी परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति होकर के मैं तन को न स्वीकार करे, मैं ये प्रकृति का अंश, भगवान है परमात्मा का अंश, तो मैं पन का भी त्याग कर दे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा करके देख लो, अगर हमारी चमड़ी हमारा मांस हड्डी ये मैं नहीं, इंद्रियां मैं नहीं, ये श्वास चलता है ये मैं नहीं, क्योंकि श्वास चलता रहता है मेरे ज्ञान नहीं होता नींद में, तो श्वास मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि इंद्रिय ये मैं नहीं हूँ, और मैं पर जो अहम 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 मैं कहता है, संस्कृत में अहम कह दू हिंदी में मैं कह दू, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है, जहाँ मैं पन का त्याग करोगे आत्म साकार हो जाएगा करके देख लो, सीधा स्वरूप है, दूसरी कई पुस्तकें है तो वो पुस्तकें आपके पास मैं पहुंचा सकता हूँ, वो पुस्तक आप देखो, बात इतने काम हो जाएगा, काम पूरा इतने में हो जाएगा, एकदम ठीक बात है, इसमें शंका हो तो पूछ लो, मानो मैं तन भी मेरा स्वरूप नहीं है, अब इसमें कोई शंका करे कि मैं पर स्वरूप नहीं तो स्वरूप क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी बारीक बात है, विशेष ख्याल करें भाई बहन, कृपा करें, मैपन है ये मैपन कब रहता है कि जागृत अवस्था में रहता है, स्वप्न अवस्था में रहता है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में मैपन नहीं रहता है, ध्यान देना मेरी बात, सुषुप्ति अवस्था में मैपन नहीं रहता है, परंतु आप रहते हैं, मैपन से आप अलग है, ये ज्ञान करने के लिए तद्दर मेरे से अलग है, ऐसे मैपन भी आपसे अलग है, इस ज्ञान के कराने के लिए मैं कह रहा हूँ, आप कृपा कर ध्यान दें, गाढ़ नींद में मैपन नहीं रहता है, मैपन अविद्या में अज्ञान में लीन हो जाता है, परंतु आप रहते हैं, ये ख्याल करने को बहुत बढ़िया बात है, एकदम साक्षात्कार की खास युक्ति है, तो मैपन नहीं रहता, मैं रहता हूँ किसी क्या पता भाई, जब नींद खुलती है तो आप स्वयं कहते हैं मैं ऐसा सुख से सोया जो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ये किसका अनुभव नहीं है, कैसा सुख से सोया था मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो अहम नहीं था, उसे मैंपन नहीं था, परंतु मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो अहम के बिना सब ज्ञान के अभाव को आप जानते हैं, तो आप अहम से अलग हुए। तो आप अहम से अलग है, मैंपन से अलग है, ये अनुभव करें आप। मैंपन से अलग करते ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मैं के साथ मिल जाते हैं। इसको कहते हैं जल चेतने गांठी पड़ी गई, यद्यपि निशा छूटे से कठिन नहीं। ये सज्जन ग्रंथि जल चेतन की ग्रंथि है। मानो आप जो मैं हूँ, ये आपका हूँ बड़ा जो सत्ता है, ये तो है सत और हूँ है असत, ये दोनों मिलकर एक हो गए। ये हुआ अज्ञान, और मैं पर मेरा स्वरूप नहीं है, फिर चुप हो जाओ, ज्ञान हो जाएगा। अब इसमें कोई शंका हो, प्रश्न करने वाले सज्जन कोई चाहे तो प्रश्न कर लो, इसमें शंका हो वो प्रश्न कर लो।
मैं का स्वरूप क्या है?
मैं का स्वरूप है प्रकृति। और मैं को प्रकाशित करने वाला है परमात्मा का अंश साक्षात। मैं भी प्रकाशित होता है ना, जैसे हमारे सामने थम्बा दिखता है, जैसे नेत्रों के द्वारा संभा दिखता है, ऐसे ही मैंपन का भी भान होता है कि नहीं? मैंपन का भान होता है, मैंपन का अनुभव होता है। तो भान जिसको होता है वो तो है आपका स्वरूप, और मैंपन है यह है प्रकृति का स्वरूप। जड़ आप और चेतन दोनों मिले हुए इस नाम चेतन। मैंपन का भान होता है कि नहीं? जागृत में होता है, स्वप्न में होता है, और सुषुप्ति में मैं के अभाव का अनुभव होता है। तो भाव और अभाव दोनों का अनुभव करने वाला नित्य होता है। जैसे आप हम आए, हमारे भाव का अनुभव यहाँ करता है, सब चले जाए कहते यहाँ कोई नहीं है, ऐसा अनुभव करने वाला वो हमारे अभाव में भी रहता है। ऐसे जागृत स्वप्न के भाव में और सुषुप्ति में अहंकार के अभाव में जो रहता है वो आपका स्वरूप है। तो स्वरूप में भाव और अभाव दोनों का ज्ञान होता है, वो स्वयं भाव रूप है। वो भाव रूप आपका स्वरूप है, अहंता से रहित आपके स्वरूप का बोध हो जाए, ये आत्म साक्षात्कार है। वो आत्मा है अहम का प्रकाशक, अहम का आधार, अहम का आश्रय तत्व है। जड़ चेतन का विश्लेषण हो जाएगा अलग अलग, तो स्वरूप में आपकी स्थिति स्वतः हो जाएगी, वहां करनी नहीं पड़ेगी। अहम मेरा स्वरूप नहीं है, क्यों? कि अहम तो लीन होता है अविद्या में, मैं कभी लीन होता नहीं, मैं तो रहता है। ऐसे अनेक जोनियों में जाते हैं तो वहां मैं बदलता है, मैं देवता हूँ, मैं पशु पक्षी हूँ, मैं यक्ष हूँ, राक्षस हूँ, देवता हूँ, भूत हूँ, प्रेत हूँ, ऐसा मुंह तो मिल जाता है, और ये बदलता है, मैं बदलता है, तो वो अपना स्वरूप नहीं है। जो बदलता है वो स्वरूप नहीं, जो नहीं बदलता है वो स्वरूप है। जागृत में आप रहते हैं, स्वप्न में आप रहते हैं, और सुसुप्ति में आप रहते हैं, अहम नहीं रहता है। तो आप अहम के भाव और अभाव को दोनों को जानने वाले हैं। दोनों को वही जानता है जो अहम के अभाव में भी रहता है। अभाव में नहीं रहता वो हरदम नहीं रहता है। तो जागृत में भी आप रहते हैं, स्वप्न में भी रहते हैं, और सुषुप्ति में भी आप रहते हैं। ऐसे ही समाधि में भी आप रहते हैं और मूर्छा में भी आप रहते हैं। कुछ पता नहीं था ऐसी मूर्छा हुई जो हमारे कुछ पता नहीं था। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा, इन पांचों से आप विलक्षण है। विलक्षण न होते तो पांच अवस्था होती, इस पांच की गणना कौन करता? थम्बा एक है, दो है, तीन, चार, ये पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। कोई बारह तेरह थम्बा ये कह सकता है वही जो थम्बे से अलग हो? खुद थम्बा थोड़ी कह सकता है ऐसा। ऐसे बदलने वाली अवस्थाओं को आप कह सकते हैं, कोई जागृत होती है, स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है, एक मूर्छा भी होती है, एक समाधि भी होती है। इनकी गणना आप करते हो तो आप इनसे अलग हो, नहीं तो गणना कैसे करोगे? पांच आदमी आपके सामने, एक गया, एक दो मिनट के बाद दूसरा गया, दो चार मिनट के बाद तीसरा गया, पांच चार मिनट चौथा गया, पांचवा गया, तो आप पांचों को जानते हो। पांचों में से कोई एक भी पांचों को नहीं जानता, अपने को जानता, वो जानते ही नहीं, क्योंकि आपके सामने होकर निकलेंगे। तो आप तो उनके भाव में अभाव में रहे हो, इस वास्ते आप जानते हो, तो उनसे आप अलग हो। ऐसे बदलने वाली अवस्थाओं को आप जानते हो, अवस्थाओं की गिनती को भी जानते हो, चाहे समाधि का अनुभव न हुआ, मूर्छा का नहीं हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का तो होता है अनुभव, सबको होता है। तीन अवस्था कहते हैं, तीन अवस्था है, तो तीनों को आप जानते हो, तीनों में आप रहते हो, तीनों से अलग भी आप रहते हो, तो आप तीनों अवस्था में किसी अवस्था में नहीं हो, और किसी अवस्था में भी आप रहते हो तो दूसरी अवस्था को आप जान ही नहीं सकते थे। अगर जागृत अवस्था में ही आप रहते तो स्वप्न को सुषुप्ति को आप नहीं जान सकते। स्वप्न में रहते तो सुषुप्ति और जागृत को नहीं जान सकते, सुषुप्ति में रहते तो जागृत और स्वप्न को नहीं जान सकते। किसी एक अवस्था में रहते तो आप तीन अवस्था में रहते हैं, तो तीन अवस्था में रहता वो किसी अवस्था में नहीं रहता। तीनों अवस्था में नहीं रहता, वो किसी अवस्था में नहीं रहता। उन अवस्था से अतीत है तत्व, उसको गुणातीत कहते हैं, अवस्थातीत कहते हैं, प्रकृति से अतीत कहते हैं। इनसे अतिक्रमण कर गया, इनसे अलादा है। ऐसा करके आप अनुभव करें। मस्तिष्क का उपयोग नहीं होगा, मस्तिष्क भी जानने में आता है, मस्तिष्क भी जानने में आता है।
मस्तिष्क से कोई जान नहीं सकते?
नहीं जान सकते आप।
आत्मा को कोई मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है?
ना, मस्तिष्क की पहले आवश्यकता है। सीढ़ियों की आवश्यकता तभी तक है जब तक छात पर नहीं पहुंचते, और वहां पहुंचने पर सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं। इस वास्ते जब तक उस बोध नहीं होता तब तक इंद्रियों की, अंतःकरण की, मस्तिष्क की, सबकी आवश्यकता है, पर वहां जाने पर कोई आवश्यकता नहीं। पहले जरूर से, पहले तो आपने पूछा, मैंने कहा, तो इन बात की जरूरत है, समझने की भी जरूरत है, धारण करने की भी जरूरत है, विवेक करने की भी जरूरत है, पर वहाँ पहुँचने पर कोई जरूरत नहीं, कोई बुद्धि की मुझे कुछ जरूरत नहीं। हम जब तक विश्वनाथ भगवान के नहीं जाते तब तक रास्ते की जरूरत है, पैरियों की जरूरत है, चढ़ने उतरने की जरूरत है, चलने की जरूरत है। विश्वनाथ वहाँ पहुँच गए फिर क्या जरूरत है, हो सकता है कर दिया हमने रास्ता हो गया। ऐसे पंचकोश अतीत है, तीनों शरीरों से अतीत है, वहाँ पहुँचने पर शरीरों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे अनुभव करने वाले को शरीर की आवश्यकता नहीं रहती, उसके जीने में और मरने में कोई फर्क नहीं रहता। शरीर रहे तो मौज है, न रहे तो मौज है। रज्जु धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया अब सूख जाते क्या है। ऐसे मनुष्य शरीर का जो लाभ लेना वो ले लिया, अब सही रहे न रहे। जब तक जीने की इच्छा है तब तक शरीर में अपनी स्थिति है, शरीर से अलग स्थिति अपने का अनुभव नहीं होगी। अगर मरता है तो बाहर हो जाता है, पर तो जीते जी अलग नहीं हुआ, तो जीते जी अलग उसका नाम है जीवन मुक्त। राजा जनक को विदेह कहते हैं, विदेह देह तो था, विदेह क्यों है कि देह रहित है, देह का अपने से अलग अनुभव हो गया, अपने आप का अनुभव हो गया तो वो विदेह कहलाते, विदेह राज। तो शरीर के बढ़ने बिगड़ने में अपने पर कुछ असर नहीं पड़ता।
जागृत अवस्था में अहम यदि अविद्या में लीन हो जाएगा,
जागृत नहीं रहेगी। अविद्या में लीन हो जाएगा तो जागृत नहीं रहेगी, जागृत में ऐसा हो जाएगा तो समझ हो जाएगी। जागृत अवस्था में अगर अहम लीन हो जाएगा तो समाधि हो जाएगी। समाधि हो जाएगी, पर समाधि में जड़ का संबंध विच्छेद नहीं होगा। जागृत अवस्था होती है स्थूल शरीर की, और स्वप्न अवस्था होती है सूक्ष्म शरीर की, और समाधि अवस्था होती है कारण शरीर की। कारण शरीर रहता है उसमें। अज्ञान में वासि मूल कारणम तद्धान में वासि विदो विधि, ऐसे मूल रहता है, कारण सही रहता है। कारण संबंध संबंध के कारण सही के संबंध विच्छेद को तुरीय पद कहते हैं। चतुर अवस्था तुरीय पद है, सूर्य और सूर्य से अतीत बस, फिर चुप है, वहां वचन नहीं है। ये तो बात वो निवर्तन से अपराप मन शास्त्र है, मन समेत वाणी उनको नहीं जान सकते, ना वाणी से कह सकते ना उसे जान सकते। और बोलो देखो, बहुत सरल बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि तत्व ज्ञान जितना सरल है इतना कोई काम सरल नहीं है, क्योंकि कोई काम को तो करना पड़ेगा, रोटी भी बनानी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, कहीं से कोई चीज लानी पड़ेगी, तो अब मौजूद नहीं है उसकी प्राप्ति में परिश्रम है। जो नित्य निरंतर मौजूद है उसकी प्राप्ति में परिश्रम क्या है, केवल उधर दृष्टि देने की समझ है बस। जैसे देखो कि कर्ण क्या गंगा जी है बस, उसको उद्योग करना पड़ता है कुछ, ठीक है गंगा जी है। आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः किमुच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंजरे। आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मि, ये मेरा स्वरूप है, तो किमित कैसे काम आए, क्या तो चाहता है किस काम के लिए शरीर को तकलीफ दे। किमित कैसे काम आए शरीर है, इसमें प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, मनुष्य जन्म सिद्ध हो जाता है। इसको ज्ञात ज्ञातन भी कहते हैं, मन जानने लायक चीज जान ली। तीन चीज होनी चाहिए, एक कृत कृत्य बना, एक ज्ञात ज्ञातव्य, एक प्राप्त प्राप्तव्य। तो कृत कृत्य वो होता है जो संसार की सेवा में अपने सब को लगा दे, वस्तुओं को, कुटुंब को, शरीर को, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को और अहम को भी सराय में लग, संसार की सेवा में लगे, वो कृत कृत्य हो जाता है। और सिर से अलग अपना अनुभव कर देता है, वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। और अपने को परमात्मा के स्वरूप में परमात्मा को हो जाए, वो प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। तीन ही शक्तियां, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, एक प्राप्त करने की है, जो मानने की शक्ति है। ये तीन शक्तियां तीन से पूरी हो गई, फिर जीवन पूर्ण हो गया, फिर अपूर्णता नहीं रही, मनुष्य पूर्ण हो गया। कृत कृत्य से भारत ज्ञात नावशिष्यते तस्य कार्यं न विद्यते। अवाप्तव्यम अनुवाप्त प्राप्त करने रहेगी, अनुवाप्त नहीं रहेगी। तो प्राप्त को प्राप्त कर लिया, करने को काम कर लिया, जानने को जान लिया, किन शक्ति का उपयोग हो गया, मौत हो गई, बस कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। ये खास जन्म की सार्थकता है, मनुष्य जन्म की सार्थकता। जानने के लिए संयम करना होता है। बाहरी वृत्ति में जब तक ये दो में से कोई इच्छा रखो, एक तो अपने वस्तु में प्राप्त करना, धन का संग्रह करने की इच्छा है, एक आराम से सुख से भोग से रहने की इच्छा है, भोगों के साथ, ये दो इच्छाएं जब तक रहती है तब तक इसका बोध नहीं होता, वो इसमें उलझा रहता है। इससे ऊंचा उठ जाता है तब उसका बोध होता है। ये दूसरा अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता, भोग और ऐश्वर्य, भोग तो सुख दुख में और ऐश्वर्य संग्रह में, संग्रह करना और सुख भोगना, ये दो खास बाधाएं, इसमें उनसे नहीं तो प्राप्ति हो जाती, उलझ जाते यही उलझ जाते, फिर आगा नहीं बढ़ता। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम त्रया प्रतिष्ठे, वेदों में ऐसा सुख लिखाया गया, ऐसा नंदन वन है, अमृत का भोग है, बहुत सुख सामग्री है, वो सुनने से एक मन ललता था उधर जाओ उधर जाओ, ऐसा तो भोग इसमें आसक्त नहीं है और वो सुनने में भी आसक्त नहीं है। तो सुने हुए पदार्थों में भोग उसने अवसर नहीं हुआ है, तो वे परमात्म तत्व का निर्णय करते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति करते हैं, इसमें निर्णय करते हैं, फिर उसको प्राप्ति हो जाती है। ये जितनी जितनी आसक्ति मिट जाती है उतनी शांति आनंद स्वतः मिलता जाता है। जैसे जल अच्छा बरसता है तो तालाब है, कुंड है, उसमें धीरे धीरे जल बढ़ता बढ़ते बढ़ते भर जाता है। अरे जल अच्छा बरसता है तो तालाब है, कुंड है, उसमें धीरे धीरे जल बढ़ता बढ़ते बढ़ते भर जाता है। ऐसे जितने संसार के संग्रह की आसक्ति मिटेगी, संग्रह संग्रह त्याग नहीं करता हूँ, संग्रह आ जाए, मिल जाए, धन मिल जाए, धन, ये जो मन में लालसा लगी है ना, ये परमात्मा तत्व की बाधक है। धन आपके पास मेरे तो बाधा नहीं हो, पर कब कि धन रहने में वो आनंद है, सब तरह से आनंद वही है, तो धन आपको कोई बाधा नहीं देगा। ये बना रहे और मिल जाए ये बाधा देगा। ऐसे भोग मिल जाए कोई बात नहीं, खाना पीना मिल गया बैठ होगी बात, परंतु ये न मिलते दुखी हो जाते, मिलने में सुखी हो जाते हो तो बस यहाँ चुक जाओगे, फिर उसको बोध नहीं होगा। और ये छूटने वाले हैं, धन भी छूटने वाला है, शरीर भी छूटने वाला है, सुख भी छूटने वाला है। छूटने वाला है तो छूटने से शांति नहीं मिलती, छूटने से शांति मिलती, छूटने से नहीं मिलती। छूट जाता है शरीर, छूट जाता है वो भोग ऐश्वर्य क्या है, कुटुंब छूट जाता है, शरीर भी छूट जाता है। तो छूट जाने से मुक्ति हो तो मरने वाले सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए, छूट जाने से नहीं होती, छोड़ना से होती है। इसमें राग आ सकती छोड़ना, एक वृक्ष है और एक दरिद्री है, एक है वृक्ष संत एक है दरिद्री, दोनों की अवस्था एक है। पैर में जूती नहीं, सिर में छाता नहीं, अंटी में दाग नहीं, पहनने की एक चद्दर है और कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं, कुछ भी नहीं है, जो मिल जाए वो मिल जाए। ऐसी दरिद्री की ऐसी अवस्था, त्यागी की ऐसी अवस्था है। पर दरिद्री दुखी है और त्यागी सुखी है। दरिद्र मिला नहीं तो उसने लिया नहीं, भोजन नहीं मिला तो दुखी हो जाता है, और भोजन नहीं करे तो व्रत हो जाता है। एकादशी के दिन व्रत कर ले कि हम तो अन्न नहीं खा रहे आज, तो व्रत को विषय हो जाती है, और नहीं मिले तो रोता है, नहीं तो सब खुशी होता है कि आज अच्छा हुआ व्रत हो रहा हमारे, व्रत किया हमने। तो अभाव दोनों के हैं, परंतु वस्तु नहीं मिलने का अभाव कल्याण नहीं करता, उसको न स्वीकार करना उसे उबरा होना कल्याण करता है। त्याग दोनों का मतलब है, दरिद्र में त्याग होता है नहीं वस्तु पास में, और वृद्ध में त्याग वस्तु है नहीं पास में, पर वस्तु की जो लोलुपता है वो बांधने वाली है। वृद्ध है उसकी लोलुपता नहीं है कि वस्तु मिल जाए, भोजन मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, आराम मिल जाए, कोई इच्छा नहीं है। आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम। आशा मिले मिले ये आशा ही परम दुखम, दुख नहीं परम दुखम, बढ़िया दुख सबसे बढ़िया, और निराशियम परम सुखम। अगर मिलने वाली वस्तु निराश होने पर भी मिलेगी जाएगी नहीं कहीं भी, जैसे अपने अपने को बुखार आने वाला है तो बुखार आएगा ही, हमने कुपित किया है तो पूरे के कर्मों का फल बुखार आएगा, जैसे बुखार आएगा वैसे बुखार जाएगा, धन आएगा धन जाएगा। तो हमारे बुखार आने वाला तो बुखार आएगा तो धन आने वाला धन क्यों नहीं आएगा, भोजन के वक्त रोटी क्यों नहीं आएगी, दो चार दिन पांच दिन भूखे रह सकते हैं परंतु आएगा। ऐसे हमारे मित्र साधु उन्होंने देखा करके देखा, अनुष्ठान करके देखा। एक हमारे मित्र वो साधु तो देखा कि देखो भगवान देते हैं कैसे देते हैं, भिक्षा तो जाऊंगा नहीं, किसी से कहूंगा नहीं भूखा हूँ, और एक जगह ठहरूंगा नहीं, एक जगह बैठा लोग देख रहे बाबा भूखा बैठा है, एक जगह ठहरूंगा नहीं, देखो भगवान कैसे देते हैं। तो चल दिए अपने पास कमल लूटा रस ले थे, उसे जल मिलता वहां से खेसते थे, जल पी रहे थे और चलते थे। चलते चलते गांव नजीक आया तो इसे चल दिया हूँ, ऐसे जो रास्ता पड़े उस रस्ते चल दिया हूँ, बोलना नहीं किसी से। तीन दिन चार दिन के दिन मेरे को संख्या याद नहीं है, बिल्कुल भूखे रहे, जल पी रहे भूखे ही रहे। एक दिन के समय शाम की भगत एक नजीक गांव के नजीक पहुंचे, एक भेड़ बकरी चराने वाला था, वो दूर से बाबा जी करता है बाबा जी, बोलना था नहीं कहना नहीं था, बोले ही नहीं, वो एक मार्ग चल दिए सामने मार गया उसने। वो मार्ग जाता था खेत में, एक मार्ग गांव का होता है खेत का मार्ग होता है, तब उनको क्या पता कहाँ का मार्ग चलता है। वह खेत आया, खेत में कुआ था, तो कमल से जल पी लिया, ले लिया हो गया और पी गए सो गए। वहाँ उस भेड़ बकरी सवार ने देखा कि बाबा भूखा है और ये खेत के मार्ग गया है, वो तो जानता नहीं खेत का मार्ग है गांव का मार्ग है, तो बाबा जी क्या पता। तो रात्रि में दूध लेकर पहुंचा, गर्म करके दूध दूध लेकर पहुंचा, जाओ तो बाबा जी वहां सोए हुए है, देख लिया करवट बदला तो महाराज बाबा जी महाराज क्या भाई कि महाराज दूध लाया हूँ पी और दूध गाय का है, मैं भेड़ बकरी चराने वाला शाम को कह रहा था आपको, आप बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोले, हाँ ना कुछ नहीं बोले, तो मैंने समझा कि बाबा भूखा होगा और गाय भकरी बकरी का दूध पिए ना पिए क्या पता, तो गाय का दूध है बकरी का लाया हूँ आप पियो, तो वो कह रहे मैंने पी लिया, उसको आना ही कुछ नहीं क्या पी लिया, भगवान ने भेजे, भगवान किस तरह देते हैं इसलिए हमें पता लगा कि भगवान ऐसे देते हैं। हम दो तीन दिन कितने भूखे रहे, अंत में जाएंगे जब हमारे आफत है वो विदा उद्योग की आती है, हमारे आफत बुखार धन जाना पुत्र का मर जाना बिना चाहे बिना उद्योग की आता है कि नहीं, ऐसे धन भी आएगा और सुख आना कोई आएगा सज्जन भी आएगा बिना कैसे आएगा। इस बात भागवत में कहा है कि सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरके होगा, इंद्रियों से आने वाला सुख नरक में भी होता है स्वर्ग में भी होता है, इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप गंध इन से जो सुख होता है वो स्वर्ग में ही मिलता है नरक में ही मिलता है। किसे कैसे मिलता है, प्राणियाम तद्यथा दुखम, जैसे दुख मिलता है प्राणियों को बिना इच्छा किए बिना उद्योग किए मिलता है कि नहीं दुख, इतने बैठे कोई इच्छा करता है कि क्या करें, पांच सात वर्ष हो गए घर में कोई मरा नहीं है, भगवान कब मरेगा कोई, कैसी इच्छा करता है कोई, चाहते जी जा रहे मर जाता है, तो ना इच्छा करते ना उद्योग करते उसके लिए, पांच सात वर्ष हो गए कोई मरे ही नहीं, कब मरेगा कोई आदमी, तो मर जाता है, बुखार आया नहीं पांच सात वर्ष हो गए, बुखार कब आएगा, ना तो कोई दवाई लेकर बुखार के लिए ना कोई चाह ना करता फिर भी बुखार आ जाता है। तो जब बुरी चीज हमारे बिना चाहे आती है तो अच्छी चीज हमारी क्यों नहीं आएगी, पापों का फल बिना कहे बिना चाहे बिना उद्योग के आता है, तो हमारे पुण्यों का फल भी बिना चाहे बिना उद्योग आना ही पड़ेगा उसको, ये रश्म दिए नहीं तो परेशान, प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्यो दैवो भी तम लग है तुम न सकता, तस्मा न सोचा भी न विस्मय चिंता ही नहीं करता, स्थिति भी नहीं है, ये तो सुनती हम नहीं करते, जो हमारे भाग्य है वो किसी के ही नहीं। शिवी क्वेटा से अंगूर आते हैं बड़े बड़े अंगूर, एक बक्सा में दो चार पांच अंगूर रही में रखे हुए, और वे जितने लाते हैं सब लाने वाले खाने वाले हैं, अंगूर खाने वाले हैं, उसके परहेज नहीं उनके खाते नहीं, वहां से चलते वहां चलते चलते जिसको मैं वहां पहुंचा हुआ अंगूर खाने ही खाने वाले हाथ में पहुंचता है, परंतु वो अंत कहीं मिलता उसको मिलता है, अब उसको मिलेगा तो बिना चाहे तो क्या कहें, परंतु दूसरा खा नहीं सकता उसको मिलेगा, ऐसा भगवान का विधान है। तो दुख बिना चाहे बिना उद्योग के मिलता है, तो सुख भी बिना चाहे बिना उद्योग के मिलेगा, सुख में आसक्त मत हो, सुख की चाहना मत करो, जैसे बुखार की चाहना नहीं करते ऐसे चाहना मत करो, बिना चाहे आती है चीज। और एक मार्मिक बात और है, चाहना से आती है चीज वो कठिनता से मिलती है, और बिना चाहे चीज आती है सुगमता से मिलती है। हमारे शरीर के निर्वाह की चीज हम चाहना न करें तो भी निर्वाह की चीज आवेगी, तो न चाहने से सुगमता से आती है, लोग गर्ज करके देते हैं, और चाहना कर से उद्योग करना पड़ता है और आती उसमें मिलती है। मैंने बहुत बचपन में एक कहानी सुनी थी, वो वास्तव में सिद्धांत में इतनी बढ़िया नहीं थी, एक प्राग मानता था एक उद्योग मानता था, उद्योग से होता है, तो बहुत बचपन की बात है। तो दोनों आदमी गए जंगल में, एक तो कहता है कि भाई उद्योग से चीज मिलती है प्राग से नहीं मिलती, एक कहते प्राग से मिलती है, मिलती तो प्राग से ही है उद्योग से क्या है, विवाद हो गया। तो दोनों जंगल में चले गए, तो वो कहता प्राग से मिलती वो तो बैठा है, उद्योग से मिलती, वो इधर उधर गया, कुछ फल लिया, कुछ पत्ती खाने की चीज लिया, ला कर दिया, उसको खिलाया, आप भी खा लिया कि देख तू कहता है प्राग से मिलता है, अगर मैं नहीं जाता तो कहाँ से मिलती, तो उद्योग किया तो तेरे को मिल गया, मेरे को ही मिल गया, उद्योग से मिलती है ना चीज, प्राग से कैसे मिलती है, तो वो कहता है उद्योग तैने किया, मेरे को प्राग से ही मिली, मैंने क्या उद्योग किया। सच्ची बात है, तो बहन है तो उद्योग से मिलती है, उद्योग से मिलती है, इसका अर्थ उल्टा मत लेना। बचपन की सुनी हुई बात कहता हूँ, मैं इन सिद्धांतों को मानता नहीं हूँ। कैसा कि काम मत करो आप ही मिलेगा, इस सिद्धांत को नहीं मानता, काम करो, तस्मा दशा सत्यंग कार्य, कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म करनी है, जो मिल जाए उसमें संतोष, उसमें चिंता मत करो, अपनी चेष्टा पूरी करो, कर्तव्य कर्मण्येवाधिकार से माँ फल कदाचन, भगवान कहते कर्तव्य में तेरा अधिकार है, कर्तव्य कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, तत्परता से सांग उपांग अच्छी रीति से गोपांग, फल तो निबद्ध देते, फल में आस होते मन जाता है, फल से त्याग कर्तव्य कर्म करो, परंतु करने से ही मिलेगा, नहीं करने ये बात नहीं है। ऐसे साधु भी रहे मेरे को, बीकानेर स्टेशन के पास और सिंगल के पास एक साधु रहते थे, ये महाराज साहब है, इनके परदादा गुरु थे, साउसराव जी महाराज, वो महंत थे, तो वो रोजाना रोटी भेजा करते उनके लिए, उनसे मिला, उन्हें बातें करी, वो कहते हैं मैं बठिंडा स्टेशन पर उतरा तो कोई परेशान नहीं, मांगता नहीं हूँ, साधु हुआ तो उसे कभी मांगता नहीं हूँ, कभी घरों में जाता नहीं हूँ, तो स्टेशन पर उतरा तो एक आदमी बड़े बड़े लड्डू दिए जाकर, लो बाबा खाली, तो वहां वो रहता था, उसका उसने हमारा भेज दे, मेरे सामने की बात देखी हो, तो भेज देते भोजन, वो कहते मैं मांगता हूँ नहीं, कुछ जीते रहे, तो ऐसे जो नहीं मांगने का नियम है वो नहीं मांगते, तो मिलता है उनको, वो मिलेगा प्राप्त तो कहाँ जाएगा। अरे भाई हम अपने जन्म लेते हैं माँ से तो उस समय उद्योग करते हैं क्या, दूध कोई हमारे पुरुषों से आता है, हम परिश्रम करते हैं जिससे दूध मिलता है माँ का, वो जब जब काम करने लायक नहीं थे तब भगवान ने प्रबंध कर दिया दूध का, फिर काम करने लायक हुए तो भी काम करो, वो धंधा करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ करो, और मिल जाओ उसे निर्वाह करो, और फिर बूढ़े हो जाए काम करने लायक न हो तो फिर भी मिलेगा, जैसे बच्चों को मिलता है, बूढ़ों को मिलता है, सबको मिलता है, इसका अर्थ कर्तव्य न करना ये मिला बिल्कुल अर्थ नहीं, कर्तव्य को करना, क्यों करने की शक्ति है आपके, बुद्धि है या सामने कार्य है, नहीं करते है तो आप अपराध करते हो, कर्तव्य करो, साधु हुए तो भिक्षा के लिए चले गए, मिल गया तो मिल गया, न मिला तो नहीं मिला, जैसे मिल गया उतना तुम निर्वाह करो, माल पर जगात लगती है, इनकम पर टैक्स लगता है, इनको टैक्स किस बात का, शक्ति है आप में नहीं करते हो तो ये आप अपराध करते हो, शक्ति है करने की तो करो, करना टैक्स है आपको, और मिलने वाली वस्तु तो मिलेगी, मिलेगी इस बात, क्यों देखा है ऐसे करके देखा है, ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक गीता पे में छपा है, अभी है कि नहीं पता नहीं मेरे को, ईश्वर अंक छपा था, उसमें एक परिशिष्ट अंक छपा था, उस समय में जितने संत मौजूद थे उनके पास आदमी भेजा गया और ये प्रश्न किया गया कि ईश्वर को मानने का क्या तात्पर्य, न माने तो क्या, माने तो क्या, और ईश्वर है इसमें कोई प्रमाण बताओ और अपने अनुभव बताओ, आपको कोई अनुभव हुआ तो, ऐसे चार प्रश्न मेरे पूरे याद नहीं है, यहाँ मिलती हूँ देख रहे, ईश्वर की सत्ता और महत्ता उसका नाम है, परिशिष्टांक था वो पुस्तक का छप गया है, ईश्वर की सत्ता और महत्ता। उसमें एक संत ने लिखा कि मैं बद्रीनारायण गया था, वो तो बद्रीनारायण से लौट रहा था तो दस्ते लगने लगी। वो पहाड़ों का ऐसा पानी होता है जिससे पेट खराब या दस्ते लगने लग जाती है, तो शरीर हो गया निर्बल, साथ मेरे कोई है नहीं, चलते चलते बड़ी थकावट हुई और रात्रि में रास्ता भूल गया पहाड़ों में चला गया। अब पहाड़ों में चला गया तो मैं क्या करूं, उसमें एक खो मिल गई है गुफा की तरह, वहां पड़ गया पड़ा रहा। दूसरा दिन हुआ तो एक आदमी आया कि बाबा कुछ लोगे खाओगे पछ ले लो कुछ, तो ये हमारे दस न लगती है तो मैं चल आया हूँ, हाथ धोए तो कर लो और ये ले लो। ले लिया, लेने पर भी शक्ति नहीं चलने की, तो फिर पड़ा रहा। दूसरे दिन फिर आया हूँ, चलो बाबा ये चल आया हूँ हाथ पे धो लो और फिर पछ लाया हूँ पालो। सब पूछा ये इस सत्ता और महत्ता में लिखी हुई बात है, उसमें देख रहा मैं कुछ भूल गया हूँ तो कई बसों की बात है, थोड़ा बहुत भूल गया पता नहीं। तुम वो पत्थर लेकर आया तो वह संत ने पूछा तुम कौन हो, कि तुम्हें कौन से क्या मतलब है, पत्थर लाए ले लो, कि नहीं आप अपना परिचय दो, सच्चा परिचय दो तो नहीं लेगा। मैं बहुत झंझट गई ज्यादा, तो कहा कि मैं वो भगवान कहते हैं वो हूँ, कि मैं कैसे साधारण आदमी जी कहते हो भगवान कैसे मानो, तो तुम कैसे मानो कि अभी चतुर्भुजी रूप हो जाए मान लूंगा, तो चतुर्भुजी रूप ने दर्शन दिए। तो आप आते हो कि जहाँ मनुष्य होते हैं वहाँ मनुष्यों को प्रेरणा कर देते हैं वे पहुँच जाते हैं, परंतु यहाँ जंगल में मनुष्य नजीक नजीक नहीं है, तो ऐसी जगह भाई मैं आता हूँ खुद, या कोई दूसरे नहीं है नजीक बहुत दूर से, इसलिए समझ दिया मैंने पत्थर लिया चल दिया। उसमें कई घटनाएं ऐसी लिखी अनुभव। एक संत ने लिखा है उसमें कथाएं आप पढ़ लेना, मेरे को बहुत वर्ष हो गए जो कुछ भूल जाता हूँ तो वो क्षमा कर देना हमें पढ़ लेना, बात आती है ऐसी। एक बाबा जी थे उसमें लिखा है कि मैं भगवान को माँ मानता हूँ, माँ मेरी माँ है भगवान, माँ नाम मेरे को प्यारा लगता है अच्छा लगता है, तो अच्छा प्यारा लगे वो भगवान को मानता हूँ, मेरी भगवान मेरी माँ है। अब माँ मेरी है मेरी व्यक्तित्व किस बात की, मेरे संदेह किस बात का, मैं ऐसे रहता हूँ। एक गांव में पहुंचा, एक धनी आदमी ने कहा बाबा जी भिक्षा करो, बस भिक्षा कर नहीं है करो, तो भिक्षा करा दी। भिक्षा करके और करने के बाद मेरे को अपने बगीचे में पहुंचा दिया, मोटर से पहुंचा दिया, वहां तक रख दिया आराम करो, और जल भर के कुंजा रख दिया, ऊपर गिलास रख दी, मैं सुनू तो आदमी को चले गए, सो गया, नींद आई प्यास लगी तो विचार किया भाई प्यास लगी पानी पीऊ, जिसमें कहता है बच्चा पीता थोड़ी माँ पिलाती है, बच्चा थोड़ी पीता है, बच्चा माँ पिलाएगी मन में आ गई, अब माँ पिलाएगी तो पियेंगे क्या पड़ेगा। इसलिए वो नौकर आया कि बाबा जी जल पियोगे, क्या माँ आ गई, अब माँ आ गई जल पिला जल पी लिया। शाम की बगत में मोटर लेकर आया जो बगीचे का मालिक था, कि बाबा जी चलो घूमने को चले, ये जो नहर चल रही है पास में उसके किनारे पर चलो थोड़ा घूम लेते हैं। अच्छा भाई चलो, गाड़ी में बैठे कि मैं केला लाया हूँ और संतरा लाया हूँ, एक उस खा लो। मैं तो नहीं, मैं केला नहीं खाऊंगा, मैं संतरा नहीं खाऊंगा, मन ही मन में घर से मन में उसको ना कह दिया, मन में करना मैं नहीं खाऊंगा, तो भी क्या खाएगा, मैं तो ऊख चूसूंगा, अब बच्चे ही तो सारे बाकी मन में ऊख चूसूंगा, मैं तो मन में आया कुछ नहीं कहा किसी ने, ये मैं नहीं खाता। वो मूर्ति उतरे और नहर पर चलने लगे, सदर था ऊपर वो हाथ में कहने लगे कि देखो बाबा जी ये तो पुराना हो गया, जो फेंक दे तो उसने नहर में फेंक दिया। बाबा जी नहर में क्यों फेंकता है, तुम बाहर रख दे के छोकरे को श्रृंगार हो जाएगा, हेड लगाया हमने बड़े खुश हो जाएंगे छोकरे, नहर में फेंक दे क्या पाएगा पानी फेंक दे बाहर रख दे। बात तो ठीक कहते बाबा जी, तो गया था जो पुलिया पड़ता था उस नहर का, वो पुल छोटी सी उस पर एक ऊख बेच रहा था रस्ते पर, तो वहाँ पहुंचे तो वो उसे जल्दी पहुंच गए वहाँ, उसे एक डंडे दे डंडा वो मैं उल जाकर के टोपी ले ली, टोपी लेकर कहा इसे क्या दाम होती इसकी टोपी में काम ले लिया भैया डंडे से तो पैसे दे दें आएगी मन में, क्यों काम तो ले ही लिया हमने। बोलो क्या पैसा कितने पैसे होते हैं कैसे पैसे लेंगे, वो ले आए ऊख ले आए टोपी ले आए टोपी बार कहा बाबा जी ऊख हो गए, वो तो बालक ठहरेगी मैं तो ऊख मन में आई रही थी कहा नहीं उन्होंने कुछ भी उसने बच्चे हैं मन में आ गया सब संतरा नहीं खाऊंगा मैं तो संतरा केला नहीं खाऊंगा। तो ऐसे माँ भेजती है उम्र में हमारे से माँ भेजती है, और माँ किसी रूप से आ जाए इधर क्या पता लगे, तो माँ ने ऊख दे दिया सूसेंगे। अब मन में तो बगीचे में आ गई वहां जब गोटर में चढ़े उसने संतरा और केला कहा उसे मन में आएगी मैं ये नहीं खाऊं तो मैं तुम ऊख चूसूंगा। तो भगवान बच्चे को पालन करे जो माँ पालन करती है अच्छा, तो भगवान अब किस ढंग से ऊख भेजा बताओ हेलो इतना ऐसे उसमें कई घटनाएं देखी अपने जीवन में किसी घटना ऐसे ईश्वर पालन करते हैं रक्षा करते हैं अच्छा अच्छा संग दे देते हैं। एक सज्जन से मैंने सुना वो कहता है मैं एक जगह रहता था सत्संग करता था अच्छे कोई संत थे, परंतु ऐसा आया मौका तो मेरे को वहां से जाना पड़ा तो मन बड़ा खराब हुआ कि क्या करूं सरकारी नौकरी है क्या है कहीं जाना पड़ेगा परंतु ये सत्संग छूट जाएगा तो बड़ा दुखी हुआ बस जाना पड़ता ही है। वहां से चला गया जहां जाकर रहा तो ऊंचे ऊंचे दर्जे के संत मिल गए वहां उसे सत्संग किया और बड़ा संतोष हुआ। फिर मन में यार ये कृष्ण मंदिर जगत गुरु ये मुख्य अध्यापक है हेडमास्टर है भगवान तो क्लास बदल देते हैं उसके पास गया और क्लास बदल दिया वहां सत्संग मिल गया। तो किसमन भगवान क्या करते हैं इसका कुछ पता नहीं पर भगवान करते हैं। एक यहाँ बनारस में रहने वाले विद्यार्थी ने लिखा था कि मैं बनारस में रहता था और पढ़ता था और हमारे माँ के इष्ट थी देवी शक्ति अन्नपूर्णा से ऐसा अन्नपूर्णा की भक्ति थी और वो कहता मेरे को माँ ने मंत्र भी सिखाया कि बेटा ये माँ से मांग लेना माँ बीमार होगी मरने लगी तो भी तुम घबराना मत ये माँ है ये सजा लेने वाली माँ है इस माँ से मांग लेना। माँ मर गई अब चलेगी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं पास में तो माँ ही चली गई कोई है नहीं देने वाला तो एक जगह ट्यूशन की जगह खाली थी कि वैसे पढ़ाने वाला हो तो हम इसे तनख्वाह देते हैं कोई आ जाए तो वहां इसने आवेदन दी कि भाई ये पढ़ा सकता हूँ इतनी क्लास में पढ़ा सकता हूँ तुम अब नियुक्ति ये गया तो ये अंत खाली नहीं हो तो आ गया हमारे अब माँ पर आई जी गुस्सा किया माँ पर कहते एक कोई माँ है मैंने मांग करी ट्यूशन हो जाए मैं वो ट्यूशन कर लू मेरी पढ़ाई कर लू दिया नहीं आपने ऐसे अगर रात्रि में माँ का जप करते थे माला फेंक दिया, सो गया। ये माया कोई काम हमारे वजह होने नहीं दिया। वो सपने में मां ने दर्शन दिया, किसी बेटा मैं तेरे को छोटी परीक्षा दी, परीक्षा में अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर आने से उनकी वृत्ति हो गई, इतने रुपये तो उनकी अच्छे विद्यार्थी ट्यूशन करने पर समय लगाना पड़ता, और वो मुफ्त में वृत्ति दे दी। तो इस तरह से भगवान क्या करते है पता नहीं, वो तो रिस्क कर रहा है, ये कोई माँ है नौकरी ने लिखने ली, इसलिए भगवान करते हैं। हम समझ नहीं पाते भगवान करते हैं ऐसे, बहुत विलक्षणता से पालन करते हैं। मेरा तो ये विश्वास है कि हर एक आदमी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है तो वो ख्याल नहीं करते, भगवान ऐसा काम करते हैं, निर्वाह वो कराते हैं, पालन शक्ति है सब का, पालन करने वाली ताकत है, तो आपका हमारा सबका पालन करते हैं। सर्व व्यापक है, सब इनको पुस्तकें दे रही है।